प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य आत्माएं दो मत पर चलती हैं। एक होती है परमात्म मत अर्थात श्री मत, जिस पर चलने से हम देही अभिमानी स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरी होती है रावण की मत, जिस पर चलने से व्यक्ति देह भान में आ जाता है। देही अभिमानी स्थिति वह होती है जिसमें हर एक मनुष्य आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता की अनुभूति करती है, और देहभान की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के निराकार स्वरूप में निरंतर ध्यान लगाना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हम परमात्मा में अपना ध्यान लगाकर अपनी खोई हुई शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में चल रहे हैं। 11वें अध्याय में वर्णन था, भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर उसके संशयों को दूर कर दिया। अर्जुन निश्चय बुद्धि हो जाता है और फिर एक प्रश्न पूछता है कि कुछ लोग, कुछ भक्त आपके साकार सद्गुण रूप को भजते हैं, उसका ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, और कुछ लोग आपके निराकार स्वरूप को, जो अचल अडोल निराकार सदा एक रस रहने वाला स्वरूप है, उस पर ध्यान लगाते हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? देखिए, भगवान तो भगवान है, सबका पिता है, और वो सबके प्यार को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। कोई चाहे उसको जानकर प्यार करता हो या अनजाने में प्यार करता हो, प्यार तो प्यार ही है। सबका निस्वार्थ प्यार परमात्मा के पास पहुंच जाता है और परमात्मा उसको स्वीकार करके उसका रिटर्न भी दे देते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो मनुष्य सगुण रूप से, साकार रूप से भी मुझको भजते हैं, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु महत्व इस चीज का है कि मेरे निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाया जाए। ऐसे मनुष्य जो मेरे निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। परंतु क्योंकि इसमें मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करना होता है, इसलिए भगवान ने कहा कि वो मनुष्य जो देहाभिमानी है, मेरे इस स्वरूप पर मुश्किल से ही स्थिर हो पाते हैं। इसलिए तू अभ्यास कर, बहुत अभ्यास के बाद तू मेरे उस निराकार स्वरूप पर ध्यान लगा सकेगा, उसमें स्थिर हो सकेगा। क्या है ये देह अभिमान? क्योंकि परमात्मा मूल रूप से निराकार है, अशरीरी है, अव्यक्त है। उससे योग युक्त होने के लिए हमें भी अपने अशरीरी और अव्यक्त स्वरूप में ही स्थित होना पड़ेगा। मनुष्य क्योंकि अपने को देह मान बैठा है, इसलिए वो देह अभिमानी बन गया है, और देह अभिमान के कारण उसका मन और उसकी बुद्धि बहुत अधिक विचलित हो गई है। देह अभिमान के कारण मनोविकारों ने, कर्मेंद्रियों के आकर्षण ने मनुष्य को बांध लिया है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो देह अभिमानी है, उनके लिए ये काम बहुत कठिन होता है। अगर तेरे लिए ये काम कठिन है तो तू अभ्यास कर, अभ्यास के द्वारा ये साधना बिल्कुल सहज हो जाएगी। मन और बुद्धि मेरे स्वरूप पर स्थिर कर दे, इसकी हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले भगवान के कुछ महावाक्य आपको यहाँ याद दिला दें। कहा कि अगर मन बुद्धि की चंचलता के कारण अभ्यास के द्वारा भी तू अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करने में असमर्थ है तो तू मेरे लिए कर्म कर, और अगर तुझसे ये भी नहीं होता है तो तू कर्मों के फल का त्याग कर, क्योंकि कर्म फल के त्याग से मन स्वतः ही शीघ्र ही शांत हो जाता है। बड़ी गहरी बातें हैं। मनुष्य निरंतर कर्म कर रहा है, उसको फल की इच्छा होती है, वास्तव में फल की कामना ही तो उसे कर्म भी करा रही है, परंतु फल मनुष्य को बांधता रहता है। फल अगर अच्छा मिल गया तो उसकी खुशी में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, और फल यदि अपेक्षा के अनुकूल न हुआ, एक्सपेक्टेड फल न मिला, तो मनुष्य निराश हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, उसकी मन बुद्धि विचलित हो जाती है और वो अपने मार्ग से हट जाता है, भटक जाता है। यहाँ बात चल रही है उन लोगों की, उन योगियों की जो निरंतर योगयुक्त रहना चाहते हैं। कर्म तो उन्हें भी करना है, कर्म छोड़कर संन्यास तो वो भी नहीं ले सकते, परंतु यदि कर्म की आसक्ति मनुष्य के अंदर रहती है, कर्म के फल के लिए विशेष लगाव मनुष्य को हो जाता है, भाई ये बिजनेस कर रहे हैं, इतना पैसे मिलने वाले हैं, इतना प्रॉफिट होगा, तो उसकी बुद्धि उसी में निरंतर लगी रहती है और वो देहाभिमानी बन जाता है, सांसारिकता की ओर उसका झुकाव हो जाता है, कर्मेंद्रियों के रस उसे पुनः खींचने लगते हैं और वो कभी भी योगयुक्त नहीं हो सकता है। तो एक चीज तो ये कि हमें देह के भान को छोड़ देना पड़ेगा। हम आत्माएं हैं, इस देह से न्यारी हैं, भ्रकुटियों के बीच में विराजमान हैं। मैं आत्मा इस शरीर की और इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये भावना, ये फीलिंग रोज स्वयं को देनी पड़ेगी, अनेक बार देनी पड़ेगी, ये अभ्यास करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कि जो मनुष्य ज्ञान के बिना मुझको भजते हैं उन्हें विशेष प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो ज्ञान युक्त होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, वो मानो मुझ में ही निवास करते हैं, वो मेरे पास चले आते हैं। तो योग का अर्थ, जैसा हम पहले भी कह आए हैं, राजयोग का अर्थ ही है परमात्मा के साथ रहना, मन और बुद्धि से उसके पास निवास करना। तो ये जो बात यहाँ गीता में आ गई है कि पहले तुम देह अभिमान का त्याग करो, इसके महत्व को समझ लें, बार बार अपने को याद दिलाएं कि हजारों साल देह में रहने के कारण हम सभी के अंदर देह का भान बढ़ गया है, परंतु हमें परमात्मा से मिलन मनाने के लिए इस देह के भान को त्याग करना ही पड़ेगा, और इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है कि मैं इस देह से न्यारी, इसको चलाने वाली, इसको वाइब्रेशंस देने वाली एक चेतन शक्ति, वास्तव में जो मैं हूँ, जो मनुष्य में ये कॉन्शियसनेस है, अपने अस्तित्व के बारे में जो फीलिंग है, उसको जान लेना चाहिए कि वो मैं ये मनुष्य नहीं, एक चेतन आत्मा हूँ। आत्मा शरीर से मिली है इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन हम अपने असली अस्तित्व को, अपने असली स्वरूप को भूल न जाएं। तो यदि हम बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो परमात्मा के स्वरूप पर हमारी मन और बुद्धि काफी समय तक स्थित रह पाएगी। बहुत से साधक ये अनुभव करते हैं कि उनका मन बार बार भटकता है, उनकी बुद्धि स्वच्छ नहीं रह पाती, उसमें कलियुगी संसार की कई सारी गंदी बातें, गंदगी भरी रहती है, इसलिए वो परमात्मा के पवित्र स्वरूप पर भी स्थिर नहीं रह पाती। हमें अपनी मन बुद्धि को यदि परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर रखना है तो उसे स्वच्छ करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है। मन बुद्धि की जरा भी अपवित्रता हमें परमात्मा के स्वरूप से तुरंत हटा देगी। साधक सभी ध्यान दें, पवित्रता ही इसलिए साधनाओं का मुख्य आधार है, क्योंकि मन बुद्धि बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, उनको स्थिर करना, जो लंबे समय तक, हजारों साल तक सांसारिकता में लिप्त रही हैं, जो अनेक जन्म कर्मेंद्रियों के रसों में खोई रही हैं, जो अपने अस्तित्व को भूल चुकी हैं, ऐसी आत्मा को आत्मिक स्थिति में लाने के लिए फिर से हमें पवित्रता की आवश्यकता है। इसलिए साधक पवित्रता पर ध्यान दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कही है कि यदि अभ्यास भी तुमसे नहीं होता है, यदि मन बुद्धि तुम्हारे वश में नहीं रहती है, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। क्यों ये कहा? क्योंकि मनुष्य कर्म अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म करने के साथ उसकी स्मृति में ये सब लोग भी हैं। वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए कर्म कर रहा है। उसको याद भी रहता है, ये काम मैं इनके लिए कर रहा हूँ। चाहे वो अपने लिए करे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करे, अपनी वासना पूर्ति के लिए करे, किसी को कष्ट देने के लिए करे। इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को बदलना पड़ेगा। हम कर्म भगवान के लिए करें। अब जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो बुरे कर्म से तो स्वतः ही बच जाएंगे। भगवान के लिए कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान को वो स्वीकार नहीं है। भगवान के लिए कोई क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि वो भी उसे प्रिय नहीं है। भगवान को लोभ भी प्रिय नहीं है। भगवान को प्रिय है संतोष, भगवान को प्रिय है धैर्य, भगवान को प्रिय है पवित्रता और निर्मलता, भगवान को प्रिय है निरहंकारिता और नम्रता। तो यदि हम परमात्मा के प्रति कर्म करने लगे तो हमारे पाप कर्म स्वतः ही बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और यदि हमें याद रहेगा कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो हमारा मन कर्मों में भटकेगा भी नहीं, विचलित भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो बार बार तो परमात्मा की याद आएगी, बार बार मन कहता रहेगा, हे प्राणेश्वर, ये कर्म तुम्हारे लिए हैं, ये तुमको अर्पित हैं। तो बहुत अच्छी मन और बुद्धि की स्थिति रहेगी, दोनों ही शांत हो जाएंगे। और तीसरी बात जो कही कि यदि तू ऐसा भी न कर पाए तो कर्म फल का त्याग कर दे, इससे तुम्हारा चित्त पूर्णतया शांत हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही ज्ञानवान मनुष्य की यह धारणा है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे और कर्म का जो भी फल निकले उसे भी त्याग कर दे या परमात्मा पर अर्पित कर दे। संभव है? बिल्कुल संभव है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल पर वैसे भी हमारा अधिकार नहीं है। कर्म का फल जैसा भी हमें प्राप्त हो जाए उसको हम समर्पित करते चले। त्याग का अर्थ है यहाँ समर्पणता। परमात्मा के लिए ही कर्म हो रहा है, उस पर ही समर्पित कर दे। अनुकूल परिणाम मिला हो तो भी परमात्मा को समर्पित, प्रतिकूल परिणाम मिला हो, विपरीत परिणाम मिल गया हो तो भी परमात्मा को समर्पित। फल का त्याग बहुत बड़ी धारणा है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया, आपको सफलता के साथ मान सम्मान और महिमा भी मिली, आपको अवार्ड मिल गया, कोई पदक मिल गया, कोई नाम छप गया आपका अखबारों में। मन से इसको त्याग कर दें, मन से इसको स्वीकार न करें। ये योगियों की और ज्ञानियों की ही पहचान है। उन्हें स्मृति में रहे कि ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये उसने मुझे दिलाया है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं, इसमें मेरी कोई योग्यता या विशेषता नहीं, ये उसको ही अर्पित है। इससे अहंकार नहीं बढ़ेगा, नम्रता बनी रहेगी, अभिमान हमारे मन मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा और हमारी योग्यताओं का विकास होगा। आगे हमें और सफलता मिलेगी, हम विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। क्योंकि यदि मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है तो मानो उसका विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ध्यान रखना है, हम सभी विकास के मार्ग के राही हैं। हर व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस चाहता है, प्रमोशन चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो बहुत ऊंचा उठना चाहता है। अभिमान उसमें सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए इस दीवार को ढहा देना चाहिए, इसे गिरा देना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा संकल्प, सबसे अच्छा विवेक और ज्ञान यही है कि मनुष्य को याद रहे कि ये चीज परमात्मा से हमें प्राप्त हुई है, उसको ही अर्पित है, उसके ही कार्यों के लिए है, उसकी दी हुई गिफ्ट के लिए हम अभिमान नहीं कर सकते कि मैंने प्राप्त की है, ये धन मैंने कमाया है, मैंने बहुत मेहनत की है, या मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूँ। इस तरह यदि हम निरहंकारी बनकर चलेंगे तो न केवल योग मार्ग पर सफल होंगे, लेकिन वो मनुष्य जो योग मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जो अपना सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वो भी विकास के मार्ग पर तो तेजी से अग्रसर हो ही जाएंगे। इसलिए कभी भी अभिमान को अपने मन मंदिर में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी बदबू है, ये एक ऐसा जहर है जो हमारे मन की शांति को, हमारे अंदर की खुशी को, हमारे अंदर प्रवाहित होने वाले सुख को नष्ट कर देता है, विषैला कर देता है। तो मनुष्य को याद रखना चाहिए कि अभिमान उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो मनुष्य परमात्मा से योगयुक्त हो जाना चाहते हैं, जैसा भगवान कह आए हैं और हमने भी कई बार इस बात को दोहराया है कि अपनी मन बुद्धि को मेरे स्वरूप पर लगा दो, ध्यान करो। मन हमेशा संकल्प करता है और बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। भक्ति में भी मन से लोग मंत्रों का जाप करते हैं और बुद्धि के लिए उस मंत्र के देवता का ध्यान करना सिखाया जाता है। यदि केवल एक ही चीज को हम यूज करेंगे, मन का प्रयोग कर रहे हों, बुद्धि को यूज न कर रहे हों, तो हमारी साधना कभी भी संपूर्ण रूप से सफल नहीं होती, क्योंकि मन केवल चिंतन करेगा, चाहे वो परमात्मा का चिंतन ही क्यों न हो, चिंतन कुछ समय के बाद समाप्त भी हो सकता है। नो डाउट कि चिंतन से बहुत अधिक सुख भी मिलेगा, चिंतन से हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, चिंतन से हमारे विचार भी महान होंगे, परंतु यदि बुद्धि भी हम परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर रहे तो बहुत सारे चलने वाले व्यर्थ संकल्प स्वतः ही शांत हो जाएंगे, हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी। और परमात्मा के स्वरूप पर जब हम अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे तो जो कुछ परमात्मा में है, शक्तियां, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, वो सब हम में आने लगेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु को जब हम विजुअलाइज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को यदि हम विजुअलाइज करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे हमारा एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हो जाता है, उसकी शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। तो परमात्मा से जो लोग योगयुक्त होना चाहते हैं, वो अपने मन में परमात्मा के संकल्प, उसकी महिमा का चिंतन करें और बुद्धि को परमात्मा के उस दिव्य ज्योति स्वरूप पर स्थिर कर दें, लेकिन देही अभिमानी होकर। इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। यदि तुम अपने को देह समझोगे, यदि तुम देह अभिमान में रहोगे, यदि तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हो पाओगे, तो तुम मेरे स्वरूप पर कदापि स्थिर नहीं रह पाओगे, वो स्वरूप तुम्हारी बुद्धि से बार बार स्लिप हो जाएगा। इसलिए हम उन सभी प्रभु प्रेमियों से कहेंगे, उन सभी साधकों से कहेंगे जो परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का निरंतर दर्शन करना चाहते हैं, क्षणों के लिए नहीं, निरंतर उसके स्वरूप का दर्शन होता रहे, वो कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग कर दें, अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पित होकर करें, ये संकल्प रख लें, हम जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, कर्मों के फलों का त्याग कर दें, कर्मों में अनासक्त हो जाएं, तो मन और बुद्धि परमात्मा की ओर खींचती रहेगी, मन और बुद्धि स्वच्छ और शक्तिशाली हो जाएंगी और तब वो परमात्मा के उस परम पवित्र ज्योति स्वरूप पर लंबे काल के लिए स्थिर हो जाएगी। इस स्थिरता में परम सुख है, परम आनंद है। ऐसा आनंद न मुक्ति में प्राप्त होता न जीवन मुक्ति में। ऐसी साधनाओं की ओर हम सभी आगे बढ़े।
निरंतर परमात्मा के ज्योति स्वरूप अथवा कहे निराकार स्वरूप में ध्यान लगाने से हम सभी आत्माएं गुणों व शक्तियों से भरपूर हो जाती हैं। भगवान अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार और पालना देते हैं, तो क्यों ना हम भगवान की पालना में पलें, उनके प्यार के पात्र बने, जिससे हम अपने लक्ष्य अर्थात देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम 28वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। अब हमें विदाई लेनी होगी, हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं। रक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती, प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथ।